कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज हम रूत नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। ये पुस्तक स्वामी भक्ति की घटना के पीछे हमारे प्रभु के छुटकारा देने वाले कार्य का आश्रय प्रकट करता है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, आपको मालूम होगा कि पिछले अध्ययन में हमने न्यायों की पुस्तक का समापन किया था और आज हम अपने अध्ययन को रूत की पुस्तक से आरंभ करेंगे। लेकिन इसके पूर्व मैं आपको इस पुस्तक की प्रस्तावना अर्थात पृष्ठभूमि को बताना चाहता हूँ। इस पुस्तक में रूत नामक एक अन्य जाति बालिका की कहानी है जो मोआब की मूर्ति पूजक पृष्ठभूमि से थी। मोआबी अनेक क्षेत्रों में बहिष्कृत माने जाते थे। रूत इसराइल के परमेश्वर में विश्वास करने लगी थी, जैसा कि अध्याय 2 उसके 12 पद में बोआज ने कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। आगे हम देखते हैं कि रूत की पुस्तक में केवल 4 अध्याय हैं, परंतु यह बौना अर्थात छोटा अध्याय बहुत बड़ा संदेश रखती है। सच तो यह है कि इसमें अनेक संदेश हैं। यह मसीह यीशु की वंशावली भी प्रकट करती है और दाऊद के वंश से अलग उसका आगमन भी दर्शाती है। कुछ टीकाकारों का कहना है कि रूत की पुस्तक का मुख्य उद्देश्य वंशावली दर्शाना है। मैं यह तो मानता हूँ कि यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, परंतु यह नहीं मानता कि यही मुख्य उद्देश्य है। कील और डेलिस्ट का कहना है, जिसे हम 4 अध्याय के 17 के अंतिम शब्द में देखते हैं, ईशय का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। यह शब्द लेखक द्वारा इन घटनाओं के लिखने का उद्देश्य प्रकट करते हैं। यह अनुमान आगे दी गई है वंशावली द्वारा पुष्ट किया जाता है, जिससे पुस्तक का अंत भी होता है। मेरे मित्रों, रूत की पुस्तक संसार में यीशु के आगमन के संबंध में अत्यधिक महत्व रखती है। इस पुस्तक के बिना हम दाऊद के परिवार को यहूदा के गोत्र के साथ नहीं जोड़ पाएंगे। यह उत्पत्ति से बैतलहम की चरनी और क्रूस और राजमुकुट और भविष्य में दाऊद के सिंहासन पर प्रभु का बैठना आदि कड़ियों से जोड़ने में यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह एक निश्चित कारण है कि रूत की पुस्तक को बाइबल में रखा गया है। तथापि रूत की पुस्तक का मुख्य उद्देश्य उद्धार की शिक्षा के एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है। उद्धार एक कुटुंबी मुक्तिदाता के द्वारा ही संभव है। परमेश्वर एक मध्यस्थ के बिना उद्धार का कार्य नहीं कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर ही उद्धार कर सकता था, अतः उसे मानव बनना पड़ा। बोअज कुटुंबी मुक्तिदाता का उदाहरण है। यह मेल के विचार में अतिरिक्त महत्वपूर्ण है। रूत की पुस्तक हमारे स्तर पर एक प्रेमी दंपति के प्रेम की गाथा सुनाती है। वे एक साधारण मनुष्य हैं, परंतु उनकी प्रेम कथा में हम उद्धारकर्ता के दिव्य प्रेम को देख सकते हैं जो उसने आपसे और मुझसे किया। रूत की पुस्तक में हम इस प्रेम कथा को अनावृत होते देखते हैं। आइए अब हम अध्याय 1 में जाएं और इसके विषय को देखें, मोआब देश में। रूत की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा, तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला गया। मेरे मित्रों, रूत की पुस्तक का यह आरंभिक पद जानकारी का भंडार है। यह एक प्रकार से समाचार पत्र का संवाद है। मेरे मित्र, अब जब आप समाचार पत्र को पढ़ें, तो किसी भी मुख्य समाचार के प्रथम वाक्य का विश्लेषण करके देखें कि उसमें कितनी अधिक महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। कभी कभी तो प्रथम वाक्य पूरा एक गद्यांश ही होता है और संपूर्ण कहानी सुना देता है। उसमें घटना, घटनास्थल, घटनाकाल और घटना का होना दर्शाता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक महान संवाददाता है, अतः इस पहले पद में वह समय और स्थान का उल्लेख करता है। समय वह था जब इसराइल में न्याय होते थे। वह अंधकार का युग था। एक प्रकार से वह युग इसराइल के इतिहास का सबसे अधिक अंधकारमय युग था। आपको स्मरण होगा कि इसराइल मिस्र देश में दास था और परमेश्वर ने उन्हें लहू और सामर्थ्य द्वारा मुक्त कराकर जंगल से लेकर प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कराया था और उन्हें उज्ज्वल भविष्य की प्रतिज्ञा दी। आप सोचते होंगे कि उनके पूर्वजों ने मिस्र में 2 दासत्व का कष्ट भोगा, उससे मुक्ति पाने के कारण वे परमेश्वर के अति उत्तम सेवा करेंगे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे मित्र, यदि आप किसी देश में आमूल सुधार देखना चाहते हैं, तो जागृति के लिए प्रार्थना न करें। वरन यह प्रार्थना करें कि परमेश्वर कलीसिया को अग्नि परीक्षा से ले चले। यह मेरी एक गारंटी है कि उसमें परिवर्तन अवश्य आएगा। पूर्व काल में परमेश्वर की प्रजा के साथ ऐसा ही हुआ और इसराइल में भी ऐसा ही हुआ था। जब जब वे परमेश्वर से दूर हुए तब तब परमेश्वर ने उन्हें दंड स्वरूप या तो किसी वैरी के अधीन कर दिया या वैरियों से पराजित करवाया। जब उन पर कष्ट आए तब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर अनुग्रहकारी हुआ। उसने सदा ही एक न्यायी तैयार किया कि उन्हें मुक्ति दिलाए। मेरे मित्र, रूत की पुस्तक न्यायों के युग की है। इसमें व्यक्त घटनाएं न्यायों के युग की इस अंधकारमय पृष्ठभूमि की है। वह समय जब शिमशोन जैसा मनुष्य जनमान्य था। आज जब लोकापवाद हमारे राष्ट्र को दहला देते हैं तब शिमशोन के अपवाद को स्मरण करें। समझौते, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के इस युग में यह घट रही है। यह अंधकार में ज्योति है। परमेश्वर ऐसे ही लिखता है या नहीं? जी हाँ, लिखता है। उसने उद्धार की कहानी भी पाप के अंधकार में लिखी थी। उसने यह आकर्षक छोटी कहानी न्यायों के अंधकारमय युग की पृष्ठभूमि में लिखी थी। हमारे सामने यही परिदृश्य है। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, यह नहीं, वहां यह भी लिखा है कि स्थान था, अर्थात बैतलहम यहूदा। यह वास्तव में अति रुचिकर है क्योंकि आज परमेश्वर के संतान के लिए बैतलहम यहूदा अत्यधिक अर्थपूर्ण है। सच कहूं तो मसीह यीशु का जन्म यहूदा के बैतलहम में कभी नहीं होता। यदि रूत की पुस्तक में व्यक्त घटनाएं बैतलहम में घटित नहीं होती। सदा स्मरण रखें कि बड़े दिन की कहानी रूत की पुस्तक की घटनाओं के साथ ही उस समय आरंभ हुई थी और ये घटनाएं हम पर प्रभाव डालेंगी जब हम रूत की कहानी धर्मशास्त्र में पढ़ेंगे। तो मित्रों, यहूदा के बैतलहम का अर्थ बड़ा ही रोचक है। सच तो यह है कि बाइबल में प्रत्येक नाम का एक अर्थ है। बैतलहम का अर्थ है रोटी का घर और यहूदा का अर्थ है स्तुति। यह रहने के लिए कैसा मनोहर स्थान है, रोटी और स्तुति का घर। रूत की कहानी का आरंभ और अंत यही है और इसी स्थान में यीशु का जन्म भी हुआ था। अब क्योंकि बाइबल और विशेष करके पुराने नियम में नामों का विशेष महत्व होता था, इसलिए यदि हम नामों का अनुवाद न करें तो बहुत सी जानकारियों से हम वंचित रह जाएंगे। कुछ बाइबल संस्करणों ने नामों का अर्थ नीचे टिप्पणियों में दिया जाता है। इसके द्वारा परमेश्वर के वचन के अर्थ का भंडार जुड़ जाता है। जैसा कि यहाँ है, यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। वह रोटी और स्तुति के घर में रहता था, परंतु उसने मोआब में अप्रवास किया, अर्थात वहां से चला गया। परमेश्वर के वचन में मोआब के बारे में बड़ी रोचक बात पाई जाती है, वरन यह हास्यजनक भी है। भजन संहिता 108 के पद 9 में लिखा है, मोआब मेरे धोने का पात्र है। मित्रों, मोआब के बारे में यह परमेश्वर का वचन है। ये लोग बहिष्कृत लोग थे। उनका आरंभ बड़ा ही रोचनीय और घृणित रहा था और परमेश्वर के वचन में मोआब का कोई मान नहीं है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर कहता है कि मोआब उसका कूड़ादान है। अब एक पल इस पर विचार करके देखिए। यहाँ एक परिवार है, पति पत्नी और दो पुत्र। वे मोआब में जाते हैं। वे रोटी और स्तुति के घर को त्याग कर कूड़ादान में भोजन खोजने जाते हैं। क्या आपने पहले कभी ऐसी कहानी सुनी है? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको प्रभु यीशु मसीह का उड़ाव पुत्र वाला दृष्टांत अवश्य ही स्मरण आ गया होगा। उसने अपने पिता की समृद्धि को त्याग दिया और परदेश को चला गया था। वहां वह सूरों के चारे से अपना पेट भरने की लालसा करने लगा। मेरे विचार में मसीह यीशु ने इस दृष्टांत की कल्पना नहीं की थी और सच तो यह है कि उसके दृष्टांत काल्पनिक नहीं थे। उसका प्रत्येक दृष्टांत सत्य घटना होता था। मेरे विचार में उसका यह दृष्टांत अनेक पुत्रों के लिए प्रासंगिक था। उस दिन से आज तक यह दृष्टांत लाखों जीवनों में दोहराया जा चुका है। मैंने कुछ समय पूर्व ही एक युवक से बात की जो अपने घर से भाग आया था। उसकी कहानी ठीक उड़ाव पुत्र की सी थी। उसने मसीह को ग्रहण किया और हमने उसके पिता को सूचना देकर बुलाया। वह अति प्रसन्न था। यह कहना कि मेरे मित्रों, अनेक पुत्रों की वास्तविकता है। अब यहाँ एक उड़ाव परिवार की कहानी ली जाती है। जब देश में अकाल पड़ा तब वे चले गए थे और वे डर गए थे। उनका पिता अब्राहम एक बार अकाल से डर कर मिस्र चला गया था और इस समय भी अकाल पड़ा है। यह अकाल उन 13 अकालों में से एक है जिनका बाइबल में उल्लेख किया गया है। बाइबल में जब जब अकाल पड़ा तब तब वह परमेश्वर का दंड माना गया था। यह समय न्यायियों का अंधकार युग का ही नहीं वरन अंधकार युग का भी अंधकार का समय था। मेरे मित्रों, जब यह घटना घटी थी उन्होंने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर रोटी और स्तुति के घर में उनकी सुधि लेने में सक्षम है। अतः हुए मोआब देश में चले गए। मैं चाहता हूं कि आपका परिचय इस परिवार से करवाया जाए। आइए हम देखें रूत की पुस्तक एक अध्याय उसका दो पद लिखा हुआ है। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक था। उसके नाम का अर्थ है मेरा परमेश्वर राजा या राजा मेरा परमेश्वर है। इस पुरुष का नाम वास्तव में अर्थपूर्ण है। उस पुरुष की गवाही पर ध्यान दीजिए, वह जहां भी काम करता होगा वे उसे अपनी भाषा में एलीमेलेक पुकारते होंगे अर्थात मेरा परमेश्वर राजा है या परमेश्वर मेरा राजा है। यह वास्तव में एक अद्भुत नाम है या नहीं? जी हाँ, उसका नाम ही एक गवाही है और यह नाम रखकर मोआब चले जाना तो वास्तव में बहुत बुरी बात थी। मेरे मित्रों, उसके व्यवहार से प्रकट नहीं हुआ कि परमेश्वर उसका राजा है। उसकी पत्नी का नाम था नाओमी जिसका अर्थ है सुहाना। मैं उसे एक अच्छा अनुवाद देना चाहता हूँ, प्रफुल्ल सूर्य ज्योति। वह एक बहुत अच्छी महिला थी। वह एक ऐसी स्त्री थी जो जीवन के प्रति प्रसन्नता का दृष्टिकोण रखती थी। मित्रों, आज ऐसे स्वभाव के अनेक विश्वासी हैं। वे सदैव जीवन के ज्योतिर्मय पक्ष को देखते हैं। वे परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीते हैं, न कि परिस्थितियों से दबकर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सदैव शिकायत करते रहते हैं, दोष लगाते हैं, देखते हैं, परंतु नौमी ऐसी नहीं थी। प्रफुल्लित सूर्य ज्योति ऐसी नहीं थी। एलीमेलेक और नौमी के दो पुत्र थे। उनके नाम महलोन और किलियोन थे। महलोन का अर्थ है अस्वस्थ और किलियोन का अर्थ है छोटा। नौमी के दोनों पुत्र दुर्बल थे। इस कारण मैं सोचता हूँ कि बैतलहम में नौमी की अच्छी गवाही रही होगी। लोग प्रायः यही कहते होंगे कि ऐसे दो दुर्बल पुत्रों का बोझ संभालने के उपरांत भी प्रफुल्लित सूर्य ज्योति कैसे प्रसन्न चित्र दिखाई देती है। परंतु यही उसकी कहानी है। हमें उनके बारे में यह बताया गया है कि वे यहूदा के बैतलहम वासी एप्राती थे। मेरे मित्रों, वे मोआब देश में गए और वहीं बस गए अर्थात उन्होंने वहां अपना घर बना लिया। अब उड़ाव पुत्र यद्यपि सूरों के मध्य था, उसने सोचा, जिसे हम लुकार्ची सुसमाचार 15 अध्याय के 18 पद में देखते हैं, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। कभी कभी उड़ाव पुत्र बहुत लंबे समय तक सूरों के बाड़े में ही रहते हैं। इसी प्रकार यह परिवार भी दुर्भाग्य से लंबे समय तक वहां रहा। क्या आप जानते हैं कि एक मसीही परिवार या परमेश्वर की संतान के साथ क्या होता है? वे जो दूर देश को चले जाते हैं अर्थात परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उस देश में उनकी ताड़ना होती है। उड़ा पुत्र जब लौटकर घर आया तब उसका पिता कह सकता था, मेरा कोड़ा या चाबुक ले आओ, मैं इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मेरा पैसा लेकर भाग गया और मेरा नाम बदनाम किया, सब पैसा फूंक दिया, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पुत्र को गले लगाया। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे एक मोटा पशु काटें और उसके लिए सबसे अच्छा वस्त्र लाएं। अनेक विश्वासी सोचते हैं कि परमेश्वर कठोर और निर्दयी पिता है। मेरे मित्रों, यदि हम उसके पास लौट आएंगे तो वह हमारा स्वागत नहीं करेगा? जरूर करेगा, वह हमारी ताड़ना करेगा। मेरे मित्रों, वह आप पर कोड़े नहीं बरसाएगा। कोड़े तो आपको परदेश में खाने पड़ेंगे। उड़ाव पुत्र को परदेश में ही मार खाना पड़ा था और उसे अच्छी मार पड़ी और यह परिवार भी परदेश में मार खाएगा। परंतु वे एक अच्छा परिवार है। मेरा परमेश्वर राजा है, वह पिता है, परिवार का सिर है और प्रफुल्लित या प्रफुल्ल सूर्य ज्योति माता है। एक पत्नी है तथा दो दुर्बल पुत्र महलोन और किलियोन। वे मोआब गए, वे कूड़ेदान में भोजन खोजने के लिए गए और वहां बस गए। अब देखिए कि आगे क्या होता है। रूत की पुस्तक एक अध्याय उसके तीन पद में लिखा है, और नौमी का पति एलीमेलेक मर गया और नौमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। मेरे मित्रों, मैंने तो आपसे कहा था कि परदेश में वे कष्ट उठाएंगे। ऐसा ही होता है, उन पर कष्ट आए। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 16 पद में यूहन्ना कहता है, पाप जिसका फल मृत्यु ना हो। मित्रों, मैं नहीं जानता कि आपके लिए मृत्यु लाने वाला पाप कौन सा है। हनन्याह और सफीरा का मृत्युदायक पाप था पवित्र आत्मा से झूठ बोलना। मेरे विचार में आज यह मृत्युदायक पाप नहीं है। यदि ऐसा होता तो आज पासवानों या पादरियों को दफन करने से राहत नहीं मिलती। मेरे विचार में प्रत्येक विश्वासी के साथ ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर से दूर होते हैं तो समस्या आती है। नौमी के पति की मृत्यु हो गई और अब देखिए कि उसके बाद क्या हुआ। रूत पहला अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, और इन्होंने एक एक मुआविन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम तो ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। परमेश्वर की संगति से दूर होना, दूर देश जाना ईश्वर त्याग की ओर और बढ़ता है। पाप में बढ़ना और बुद्धिमान होना, उन्होंने यही किया। उन्होंने मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करके मुआवी स्त्रियों से विवाह किया। मित्रों, ओरपा का अर्थ है हिरन। इससे प्रतीत होता है कि वह एक खिलाड़ी जैसा शरीर रखती थी। अब आप आश्चर्य करते होंगे कि ऐसी फुर्तीली स्त्री ने एक दुर्बल युवक से विवाह क्यों किया, परंतु उसने विवाह किया। अब इसके बाद हम उस स्त्री के विषय में देखेंगे जो हमारे ध्यान का केंद्र है। रूत का अर्थ है सौंदर्य अर्थात आकर्षक व्यक्तित्व। यह उसका गुण था। वह सुंदर थी परंतु मूर्ख नहीं थी। वह एक असाधारण व्यक्तित्व की महिला थी और मुझे विश्वास है कि आप उसे देखकर अवश्य उससे प्रेम करने लगेंगे, क्योंकि वह हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्वजों में है। दूसरे शब्दों में, मानव यीशु की नसों में रूत का लहू दौड़ रहा था। आइए अब हम उससे परिचय प्राप्त करेंगे। उसने मोआब में महलोन से विवाह किया। मैं उसके वर्णन में एक शब्द काम में लेना चाहता हूँ जिसे सिनेमा ने गलत अर्थ दे दिया है। निश्चय ही रूत मोहिनी थी। उसने उस दुर्बल युवक से क्यों विवाह किया? मित्रों, यह समझना अभी कठिन है, परंतु हम आगे चलकर इसे समझ पाएंगे। अब इस उड़ाव परिवार पर इस दूर देश में समस्या आ गई और नौमी और रूत पर अभी और भी समस्या आएंगी। नौमी का पति मर गया और पुत्रों ने मुआबी स्त्रियों से विवाह किया। हम रूत की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए तब नौमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों पुत्र मर गए। मैं सोच भी यही रहा था कि वे अगली ठंड आने तक बच पाएंगे या नहीं, और यही हुआ कि वे मर गए क्योंकि वे दुर्बल थे। नौमी का पूरा परिवार समाप्त हो गया था। उसके पास जो कुछ अब बच गया था वह उसकी 2 जवान बहुएं थी। मैं कहता हूँ समस्या निश्चय ही आई। इस परिवार को भी उड़ाव पुत्र की नए परदेश में मार पड़ी। मेरे मित्रों, हम रूत 1 अध्याय के 6 पद में पढ़ते हैं, तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। ध्यान दीजिए, प्रतिज्ञा के देश में अब अकाल समाप्त हो गया था और बैतलहम में फिर से स्तुति और रोटी का प्रबंध हो गया था। अब नौमी स्वदेश लौटना चाहती थी, और यह एक रोचक बात है कि बिसरा हुआ परिवार और उड़ाव पुत्र पिता के पास लौटने की लालसा करते हैं। यदि वे पिता के पास लौटने की लालसा न रखें तो वे पिता की संतान नहीं है। उड़ाव पुत्र सूरों के बाड़े में कभी प्रसन्न नहीं रहा। वह सूरों के बाड़े के लिए नहीं था। उसमें सूअर का स्वभाव नहीं था, उसमें अपने पिता का स्वभाव था कि उसने अंत में कहा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। मेरे मित्रों, बाड़ा सूअरों को ही अच्छा लगता है। दूसरा पत्रस की पुस्तक 2 अध्याय उसके 22 पद में पत्रस एक कहानी सुनाता है जिसे मैं उड़ाव पुत्र या उड़ाव सूअर का दृष्टांत कहता हूँ। नहलाए हुए सूअर ने कीचड़ में लौटने के लिए फिर से चली जाती है। एक छोटा सूअर नहा धोकर तैयार हो गया और उड़ाव पुत्र से कहने लगा, तुम घर जाने के लिए तैयार दिखाई देते हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इस प्रकार वह सूअर उड़ाव पुत्र के साथ उसके घर गया, परंतु उसे वहां का साफ सुथरा परिवेश अच्छा नहीं लगा। उसने उड़ाव पुत्र से कहा, हम खाना नीचे डालकर उसमें कूद कूद कर खाना क्यों ना खाएं, बड़ा मजा आएगा। मेरे मित्रों, यहाँ तो बिस्तरे साफ सुथरे हैं, मुझे तो कीचड़ अच्छा लगता है, यही उसका कहना था। और अंत में उस छोटे ने कहा, मैं अपने पिता के घर जाऊंगा। और आप जानते हैं उसका पिता कहाँ है, अर्थात कहाँ था? सुअरों के बाड़े में। वह सुअर के बाड़े में लौट गया। वह वहीं जाएगा जहाँ उसका घर होगा और उड़ाव पुत्र अपने घर जाएगा। मेरे मित्रों, आप इस पर निर्भर कर सकते हैं और हम उलझन में पड़ जाते हैं हम जब देखते हैं कि जीवन के मार्ग में उड़ाव पुत्र सुअर के बाड़े में जा रहे हैं और उड़ाव सुअर पिता के घर जा रहे हैं, जैसा होना नहीं चाहिए। कभी कभी वे कलीसिया में आ जाते हैं और समस्याएं खड़ी कर देते हैं। पिता के घर में सुअर की नाई हुए कलीसिया में उत्पाद मचाना आरंभ कर देते हैं, परंतु अंततः वे सुअरों के बाड़े में ही जाएंगे। आप बस प्रतीक्षा करें। मेरे मित्र, अब इस परिवार को भी स्वदेश लौटना था। अंत में नौमी ने निर्णय लिया कि वह यहूदा के बैतलहम को लौट जाएगी। रूत की पुस्तक 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, तब वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली और वे यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिए। मेरे मित्र, ध्यान दीजिए, अब नवमी अपने निर्णय के बारे में अपनी बहू से चर्चा करेगी और उन्हें बैतलहम की परिस्थितियों से अवगत कराएगी। मुआबी और इसराइलियों में परस्पर मेल नहीं था। इसराइली मुआबियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे, जिस प्रकार आगे चलकर वे सामरियों को तुच्छ समझकर दूर रखते थे। नवमी उन्हें स्पष्ट बताती है कि वे मुआबी होने के कारण बैतलहम में दुख उठाएंगी। यदि वे उसके साथ गई तो वे वहां कभी विवाह नहीं कर पाएंगे। वे अभी युवा स्त्री हैं, जवान हैं, वे आजीवन विधवा ही रहेंगी और इसीलिए नवमी उन्हें बताती है कि उनका घर उजड़ जाएगा, इसलिए क्यों ना वे यहां पर ही विवाह कर लें। अर्थात भोजन व्यवस्था में भी उन्हें कठिनाई होगी। तब हम देखते हैं रूथ एक अध्याय के 8 पद में, तब नवमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। मेरे मित्रों, उसने उनकी प्रशंसा की, वे अच्छी बहुएं रही हैं। एक माँ के लिए यह स्वीकार करना बहुत कठिन होता है कि किसी स्त्री को अपने पुत्र के योग्य समझे, परंतु यहाँ नवमी इन दोनों परदेशी लड़कियों से कहती है कि वे अच्छी पत्नियां थी। उसने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे अपने माता पिता के पास लौट जाए, उसके साथ बैतलहम ना जाए, क्योंकि वहां उनका जीवन दुभर हो जाएगा। वह कहती है कि वे वहां ना जाएं। हम रूथ एक अध्याय के 9 पद में पढ़ते हैं, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पत्ती करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चुमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मेरे मित्रों, ये वास्तव में नारियों की गोष्ठी है। नवमी ने उनसे कहा कि यदि वे मुआब में रहीं तो फिर से विवाह करने की संभावना है, अपने ही लोगों में उन्हें लड़के मिल जाएंगे, परंतु उसके साथ इसराइल में यह संभव नहीं होगा। अब ये तीनों स्त्रियां मुआब में चौराहे पर खड़ी हैं। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है। रूथ की पुस्तक 1 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग और तेरे लोगों के पास चलेंगे। मित्रों, आरंभ में उनका निर्णय था कि वे नवमी के साथ उसके देश जाएंगे। तब हम रूथ 1 अध्याय के 11 पद में पढ़ते हैं, नवमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? ध्यान दीजिए, मूसा की व्यवस्था के अनुसार किसी विवाहित पुरुष की मृत्यु हो जाने पर उसका निकटतम कुटुंब भी उसकी विधवा से विवाह करे, यही उसका नियम था। यदि उसका भाई है तो पहले वह विवाह करे। निस्संदेह यह बड़ा ही विचित्र नियम था। रूथ की पुस्तक में आगे चलकर हम यह नियम रूथ पर लागू होते हुए देखेंगे। यह कुटुंबी छुड़ाने हारे की कहानी है। नवमी अब अपने बहुओं से मतलब की बात करती है। वह उन्हें स्पष्ट समझाती है कि यदि तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारी पुनर्विवाह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे लोग तुमसे सख्ती का बर्ताव करेंगे, अर्थात एकता स्थापित नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे साथ समाज से बहिष्कृतों का सा व्यवहार किया जाएगा। तब हम रूथ 1 अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने में बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते। अतः नवमी ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने ही देश में रहें। उसने उनसे स्पष्ट कह दिया कि वह पुत्र जनने योग्य नहीं है, और यदि उसके पुत्र उत्पन्न भी हुए तो क्या वे इतने वर्ष प्रतीक्षा कर पाएंगे कि वे बड़े हो जाएं? तुम क्यों संतान प्राप्ति से वंचित होना चाहती हो? रूथ 1 अध्याय उसके 13 पद में आगे लिखा है, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा के हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। मेरे मित्र, आपने देखा कि परमेश्वर ने नवमी के परिवार को दंड दिया और उसने उन्हें स्पष्ट समझाया कि उन्हें भी दुख उठाना होगा। इसी कारण वह नहीं चाहती थी कि वे उसके साथ जाएं। अब देखिए रूथ 1 अध्याय उसके 14 पद में, तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग न हुई। ध्यान दीजिए, अब उनके मार्ग अलग अलग होते हैं। जैसा मैंने कहा, आप मुआब के किसी भी मार्ग के मोड़ पर आएंगे तो इनका स्मरण हो आएगा। यदि हम उस युग में इन तीन स्त्रियों को रोते देखते तो ऐसा प्रतीत होता कि कोई विशेष बात नहीं है, परंतु मेरे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन लिया गया निर्णय निश्चित करेगा कि यीशु का जन्म यहूदा के बैतलहम में हो या ना हो। यदि निर्णय उचित ना हो तो ज्योतिषियों को कह दे कि वे आने की तैयारी ना करें, क्योंकि यीशु का जन्म वहां नहीं होगा। हमें यह निर्णय साधारण सी बात प्रतीत होती है, परंतु यह एक गंभीर निर्णय था। मेरे मित्रों, ओरपा अपने लोगों में लौट गई जैसा नवमी ने उसे कहा था। तब हम रूत की पुस्तक 1:15 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। ध्यान दीजिए, ओरपा ने घर लौट जाने का निर्णय लिया। परमेश्वर के लिए उसका निर्णय सच्चा नहीं था। वह मूर्ति पूजा में लौट गई। लौटने के साथ साथ वह धर्मशास्त्र के इतिहास से विलोप होकर अज्ञात वास में चली गई। हम उसके बारे में नहीं सुनेंगे। रूत ने परमेश्वर को चुना। उसका यह निर्णय अनंत काल का हो गया। आप उसका नाम नए नियम के पहले अध्याय में भी देखेंगे। वह मसीह की वंशावली में है। नाओमी ने उसकी सत्यनिष्ठा को परखते हुए कहा कि वह अपने जेठानी के साथ अपने देवताओं के मध्य लौट जाए। हम रूत की पुस्तक 1:16 में देखते हैं। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मैं तुझे त्याग व छोड़कर लौट जाऊं। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मेरे प्रिय मित्र, रूत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यह 7 गुना निर्णय है। उसका यह निर्णय परमेश्वर को चुनने का निर्णय था। मित्रों, मेरे विचार में यह एक सच्चा मन फिराव है। यह एक अर्थपूर्ण मन फिराव है। 2 कुरिन्थियों के पत्र 7:10 में यही लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। रूत ने यह निर्णय लिया और वह अटल था। मेरे प्रिय मित्र, आज हमारे जीवन में भी कई ऐसे मौके आते हैं जहां पर मुझे और आपको निर्णय लेना होता है, लेकिन क्या आप ऐसा सही निर्णय ले पाते हैं? आज मुझे और आपको भी रूत के जीवन से सीखने की आवश्यकता है, ताकि हम भी परमेश्वर के आशीषों के भागीदार बन सके। मेरे प्रिय मित्र, आज के अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं यह आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा रूत के जीवन से आपने अवश्य ही अपने जीवन में आशीष प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको भी अपने जीवन में एक सही निर्णय लेने में सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।